नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ। 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलेंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया। इसके अंतर्गत प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गईं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा और राजघाट डिपो पर एक पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
इन बस सेवाओं के माध्यम से नेहरू प्लेस, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, आरकेपुरम, कनॉट प्लेस, ITO, दिल्ली सचिवालय, करोल बाग, कश्मीरी गेट और शिवाजी स्टेडियम जैसे प्रमुख रोजगार, शैक्षणिक और संस्थागत केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली करनाल अंतर्राज्यीय ई बस सेवा का शुभारंभ दिल्ली से हरियाणा के प्रमुख शहरों को स्वच्छ और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इस मार्ग पर 5 इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन बसें संचालित होंगी और दोनों दिशाओं में प्रतिदिन कुल 10-10 यात्राएं निर्धारित की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का दृष्टिकोण ऐसा सार्वजनिक परिवहन तंत्र तैयार करना है जो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। वहीं दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को यह लेडीज स्पेशल बस सेवा एक विशेष उपहार है। श्री सिंह ने कहा कि इन सभी पहलों के माध्यम से दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए खास बसें शुरू की गई हैं, जिनमें अभी 56 बसें चल रही हैं और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएंगी। यह नई पहल राजधानी दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने और शहर को साफ सुथरी और स्थायी गतिशीलता की तरफ ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब इस महीने की 24 तारीख तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा किए हैं वे 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की गिरफ्तारी पर कहा है कि सदन में CAG की 19 रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के समय हुए सभी घोटालों की जांच चल रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि CAG की सभी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
19 CAG रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार का था वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब CAG रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज काम कर रही है।
दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया कि पेंशन की राशि 1 सितंबर से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आज जेजे कॉलोनी और ओल्ड पंखा रोड में अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। ये दिल्ली के जरूरतमंद नागरिकों तक सस्ती पौष्टिक भोजन की सुविधा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सूद ने कहा कि जो लोग दिनभर काम करते हैं और उन्हें घर पर खाना बनाने का समय नहीं मिलता, उनके लिए ये एक उपयोगी सुविधा होगी।
जो लोग दिन में दो बार एक ही बार बना खाना खाते हैं, उनके लिए एक उपयोगी साधन होगा और ये हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो हमारा नारा है, जिसमें हमने दिल्ली की गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जीवन देने का वादा किया था, उनको वहीं पर पक्के मकान भी देने का काम चालू हो गया है, भोजन देने का काम शुरू हुआ है। ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
श्री आशीष सूद ने आज एक जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने अधिकारियों के साथ संबंधित विषयों पर चर्चा कर समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना ही जनसुनवाई का उद्देश्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने कहा कि इसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र होना चाहिए। एक रिपोर्ट।
नीट UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो, जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट UG 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। प्रादेशिक समाचार के लिए जागृति शर्मा।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की DNA और बायोमेट्रिक पहचान के लिए एक सुरक्षित केंद्रीकृत व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य और कल्याण शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मेडिकल शिविर में अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनीरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दो लोगों पर हमला किया था। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली इलाके में एक इकाई पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग 250 कम गुणवत्ता वाली एल्यूमिनियम फॉयल पेपर रोल जब्त किए गए। ये कार्रवाई अधिनियम 2016 की धारा 28 के तहत कथित गैर अनुपालन की सूचना मिलने के बाद की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें, बल्कि उनकी चिंताओं को सुनने, समझने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली अधीनस्थ सेवा DSS कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नत करते हुए उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में तैनात किया है। सर्विस विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, व्यापार कर और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और संरचित तैयारी रणनीतियों को देशभर के विद्यार्थियों तक पहुंचाकर एक सशक्त राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है। आगामी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ दूसरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी परिसरों में CCTV कैमरों के जरिए मुख्य मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सबसे पहले छात्रों को एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लिंगदोह कमेटी के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। नई दिल्ली के टिकरी कलां के एक CNG पंप पर आज दोपहर एक ट्रक में धमाका हुआ। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दोपहर 3:37 पर आग लगने की खबर मिली। अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी भी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिली है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ। 56 लेडीज स्पेशल बसें विशेष रूटों पर चलाई जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया। प्रमुख तारीखें आगे बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार 26 अगस्त को दिल्ली लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी और PV सिंधु ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।